అజామిలా అజామిల్నే అపి భీ అత తత్పశ్చాత్ ఆకర్ణ్య సునకర్ ధృతానామ దూతానామ దూతంకు యమకృష్ణయో యమరాజ్ తథా కృష్ణ కా ధర్మం వాస్తవిక ధర్మ కా సిద్ధాంత్ భాగవతం జైసే కి శ్రీమద్ భాగవత్ మే వర్ణిత హై అథవా జీవ తథా భగవాన్ కే బీచ్ సంబంధ విషయక్ శుద్ధం శుద్ధ త్రైవేద్యం తినో వేదో మే ఉల్లేఖిత చా భీ గుణ ఆశ్రయం ప్రకృతి కే గుణోం కే ఆధీన్ భౌతిక ధర్మ భక్తిమాన్ శుద్ధ భక్త్ భగవతి భగవాన్ కే ప్రతి ఆశు తురంత్ మహాత్మ్య నామ యశ ఆదిక గుణానువాద్ శ్రవణాత్ సున్నే సే హరే భగవాన్ కే అనుతాప ఖేద్ మహాన్ అత్యధిక్ ఆసీత్ థా స్మరతః స్మరణ్ కర్తా హువా అశుభం సమస్ అశుభ కర్మ ఆత్మనా అప్నే ద్వారా కియే గయే హుయే అనువాద్ తథా తాత్పర్య శిల ప్రపాద్ ద్వారా శిల ప్రపాద్ కీ జాయే యమదూతో తథా విష్ణుదూతో కే బీచ్ హుయీ వార్తాలాపం కో సున్కర్ అజామిల్ ఉన్ ధార్మిక సిద్ధాంతం కా సమజ్ సకా జో భౌతిక ప్రకృతి కే తీనో గుణో కే ఆధీన్ కార్య కర్తే హై యే సిద్ధాంత తీనో వేదో మే ఉల్లేఖిత హై వో ఉన్ దివ్య ధార్మిక సిద్ధాంతం కో భీ సమజ్ సకా జో భౌతిక ప్రకృతి కే గుణో సే ఊపర్ హై ఔర్ జో జీవ్ తథా భగవాన్ కే బీచ్ కే సంబంధ సే సంబంధిత హై ఇతనా హీ నహీ అజామిల్ నే భగవాన్ కే నామ యశ్ గుణో తథా లీలాం కే గుణానువాద్ కో సునా ఇస్ తరహ వో పూరీ తరహ శుద్ధ భక్త్ బన్ గయా తబ్ ఉసే అప్నే విగత్ పాప కర్మో కా స్మరణ హువా ఔర్ జో ఉసే అత్యధిక్ దుఃఖ హువా కి ఉస్నే యే పాప క్యో కియే తాత్పర్య భగవద్గీతా మే దూసరా అధ్యాయ 45 శ్లోక మే శ్రీ భగవాన్ శ్రీకృష్ణ నే అర్జున్ సే కహా త్రైగుణ్య విషయా వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవ అర్జున నిర్ద్వందో నిస్తసత్తస్తు నిర్యోగోచ్ఛేమ ఆత్మవాన్. వేదో మే ముఖ్యతయా ప్రకృతి కే తీనో గుణో కా వర్ణన్ హువా హై. యే అర్జున్ ఇన్ తీనో గుణో సే ఊపర్ ఉఠో సమస్త దైత్యో హాని లాభ తథా సురక్షా సారీ చింతాం సే ముక్త్ హోకర్ ఆత్మపరాయణ బనో. వైదిక సిద్ధాంత నిశ్చయ ఆధ్యాత్మిక పద్ తక్ ఊపర్ ఉఠనే కే లియే క్రమిక విధి కి సంస్థితి కర్తే హై. కింతు యది కోయి వైదిక సిద్ధాంతో మే లిప్త్ రాతా హై తో పూరే ఆధ్యాత్మిక జీవన్ భర్ ఉస్కో ఊపర్ ఉఠ పానే కి కోయి సంభావనా నహీ రహతీ హై. ఇసిలియే కృష్ణ అర్జున్ కో భక్తి కర్నే కే సలహా దేతే హై క్యోంకి దివ్య ధర్మ కి యహీ విధి హై. భక్తి కే దివ్య పద్ కి పుష్టి శ్రీమద్ భాగవత్ మే భీ కీ గయీ హై. సావే పుంసో పరో ధర్మ యథో భక్తి అథోచ్ఛజే. భక్తి పరో ధర్మ హై అర్థాత్ దివ్య ధర్మ హై. యే కోయి భౌతిక ధర్మ నహీ హై. సామాన్యతయా లోగ్ యే సోచతే హై కి భౌతిక లాభ కే లియే ధర్మ కా పాలన్ కర్నా చాహియే. యే ఉన్ లోగోం కే లియే ఉపయుక్త్ హో సక్తా హై జో భౌతిక జీవన్ మే రుచి రఖతే హై. కింతు జో ఆధ్యాత్మిక జీవన్ మే రుచి రఖతా హై హో రఖతా హో ఉసే పరో ధర్మ అర్థాత్ ఉస్ ధర్మ కే ప్రతి అనురక్త్ హోనా చాహియే జిస్సే మనుష్య భగవాన్ కా భక్త్ బన్తా హై. యతో భక్తి రదోచ్చదే భాగవత్ ధర్మ యహీ శిక్షా దేతా హై కి భగవాన్ తథా జీవో మే నిత్య సంబంధ హై ఔర్ జీవ్ కా కర్తవ్య హై కి వో భగవాన్ కి శరణ్ గ్రహణ్ కరే. జబ్ కోయి వ్యక్తి భక్తి కే పద్ పర్ స్థిత హోతా హై తో వో సారే అవరోధోం సే ముక్త్ హో జాతా హై ఔర్ పూర్ణ ఉత్తుష్ట హోతా హై. అహేతు కి అప్రతిహతా యాత్మా సుప్రసీదతి. ఉస్ పద్ తక్ ఊపర్ ఉఠకర్ అజామిల్ అప్నే విగత భౌతికతావాదీ కార్యం కే లియే పశ్చాత్తాప్ తథా భగవాన్ కే నామ యశ్ రూప్ తథా లీలాం కా గుణానువాద్ కర్నే లగా. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా यच्छोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सेगना रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सेगना ललिता श्रीविशाखानुतं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः संकर्षण कारणतो यशाय गर्भोदशाय च पयोदशाय शेषस्य यस्यांश सा नित्यानन्दाक्षराम शरणं ममस्तु ॐ नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे समस्त भक्तगणों को हरे कृष्णा। आज का प्रातःकाल सत्संग सभा में आप सभी को अभिनंदन आने के लिए और श्री श्री राधा राजबिहारी श्री सीताराम लक्ष्मण गोनिताय का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। भक्ति में अग्रसर होते रहें। आज का ये प्रसंग चल रहा इसमें कई भक्त नए भी हैं जो रोजाना भक्त इधर हैं उनको तो मालूम है ये अजा मिल श्री श्री राधा रास विहार सीताराम लक्ष्मण गोनिताय की जाए सुप्रभात की जाए। ये संदर्भ इस प्रकार चल रहा यादव मेलो प्रख्यान का थोड़ा सा भूमिका देना है। पिछले स्कंद में हम सुने हैं सुखदेव गोस्वामी अंत में नरकों के बारे में बता देते हैं इतने प्रकार का नरक है। अच्छा धन्यवाद। अथा इस प्रकार का नरक है 14 भुवन है विश्व में इतना प्रकार का नरक है। फिर नरक बताने के पश्चात जो है नरक में कौन सा जीव कहां जाता किस नरक में जाता वो भी बता देते हैं। जैसे कि किसी परस्त्री का अपहरण करते हैं परायों का धन अपहरण करते हैं बच्चों का अपहरण करते हैं उसको तामेश्वर नरक में भेजेंगे जहां पूरा भूतल जो है तांबे जैसा रहता गर्म एकदम गर्म उस जीव को कई वर्षों तक उसमें जाना। नरक में यह विशेष है कि सूक्ष्म शरीर होता है तो मरता नहीं है भौतिक शरीर मरता है बड़ा कष्ट पीड़ा अनुभव करता है लेकिन कुछ ना हा हा बोलेगा लेकिन मरेगा नहीं है चिल्लाते रहेगा और भी घोर पाप करेगा और भी उसके अंधता मिश्र में भेजेगा। और जो जैसे कि आजकल प्रथा चल रहा ना क्या बोलते हैं ब्राय बाहर का दूसरा पक्षी पशुओं को मारकर उसका मांस वगैरह लेकर जलाकर पकाकर खाने के लिए रुचि रखते हैं उसको कुंभी पाक में भेजते हैं जिसका पास 526 अध्याय पढ़ लीजिए बहुत अच्छा दे किस प्रकार का पाप के लिए कौन सा नरक है अलग अलग जेल रखा हुआ है। तो हमारे जैसा सभी को एक ही जेल में नहीं रखते हैं यमराज को मालूम है उधर भी गड़बड़ करेंगे इसलिए अलग अलग प्रकार के उधर करेंगे भूलोक में तो गड़बड़ करते ही है। इसलिए अलग अलग जेल में रखा, एक दूसरे को कोई संपर्क नहीं रहता। तो जो ऐसे प्रकार करते हैं कुंभीपाक नरक में भेजेंगे, जहां यमदूत जो है जिस जीव के बीच में से, शरीर के बीच में से लोहा डालकर आग के ऊपर करेंगे। जिस प्रकार इधर भराई करते थे आग, मांस का टुकड़ा लकड़ी के ऊपर रखकर जलाते थे, उधर भी उस जीव को जलाएंगे कई वर्षों तक। इस प्रकार जब बताने लगा, महापरिचित भयभीत हो गया, बस करो गुरुदेव बस करो, अभी बहुत हो गया ये। फिर प्रश्न करते हैं कि इतना जीव के इतना भोगना पड़ता है, कई अनजान से भी करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अनजान से करो या जानकर करो, पाप पाप ही है। जिस प्रकार जो है छोटा बच्चा आग को पकड़ा है, आग कभी नहीं बोलेगा छोटा बच्चा नादान है चलो छोड़ देता हूं, बोलेगा जलाएगा जरूर, उसका धर्म है। इसी प्रकार पाप जो भी किया अनजाने से भी किया, उसको पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। यदि इधर ही जेल में भोग देता तो अच्छी बात है, लेकिन झूठा विटनेस देकर इधर से बच गया, यमराज के पास से सजा लेना है। इधर ही भूलोक में यदि हम सजा भोगते हैं, यमराज से भोगने की जरूरत नहीं पड़ता, परंतु यहां नहीं भोगेंगे यमराज से भोगने, यमराज की सजा अत्यंत कठिन है, पीड़ादायक है। फिर परीक्षित महाराज बोलते, गुरुदेव ये ऐसा क्यों, भगवान यमलोक बनाए क्यों, नरक बनाए ही क्यों? श्रीला प्रभुपाद व्याख्या में लिखते हैं कि गवर्नमेंट कोई जेल बनाना नहीं चाहता, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है जेल पसंद नहीं करता, लेकिन जेल बनाना पड़ता, खाली भी हो जाना, क्योंकि मालूम है कि इतना करोड़ आदमी कोई ना कोई गलती करेगा, उसके लिए रखने के लिए कुछ जगह चाहिए। इसी प्रकार जो है भगवान भी कहते हैं कि जब जो पाप किए हैं, दो उपाय है, या तो अपना आप ही उसको सुधार लें, नहीं सुधारता है तो उसके लिए सुधारने के लिए करेक्शनल सर्विस बोलते हैं आजकल, पता नहीं भारत में बोलते हैं, अफ्रीका अमेरिका यूरोप में जेल नहीं बोलते आजकल, प्रिजन डिपार्टमेंट नहीं बोलते, अपराध होता है, करेक्शनल सर्विस बोलना उसको, मिनिस्टर फॉर करेक्शनल डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शनल सर्विस है, वही है जेल है लेकिन नाम बदल दिया। जैसे भारत में पहले थर्ड क्लास कंपार्टमेंट होता था, जनता पार्टी आते थे कोई थर्ड क्लास में नहीं, सब सेकंड क्लास में जर्नी करेंगे, क्या किया तीन का जर्नी, तीन लकीर होता था, एक लकीर खींच दी निकाल दिया, बस डब्बा वही है। तो इसी प्रकार है जो बोला है कि इतना क्यों करना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये नरक जो है जीव का उद्धार के लिए, भगवान जो है श्रुद है, इसलिए जीव को उद्धार करने के लिए नरक बनाया। परीक्षित महाराज बोलते ये कैसा हो सकता, इतना यात्रा होता उधर उद्धार के लिए कैसा? परीक्षित महाराज समझाने के लिए, अब हमें भी समझने के लिए, जब हमारा कपड़ा कोई मैला होता है, थोड़ा मैला होता है उसी टाइम में साफ करो ठीक है, और कोई मेरा जैसा आलसी होगा, अरे हफ्ता में एक ही दफा साफ करेंगे, बार बार क्या रोधन धुलाई करना, करते रहा पूरा कालर वगैरह पूरा गंदगी हो गया, इतना गंदगी हो गया कि आपका हाथ से नहीं हो रहा, तब क्या करोगे? धोबी की दोगे, धोबी घाट में धुलाने के लिए। अभी धोबी घाट में कपड़ा क्या करते, मार मार कर देते ना, करते देखा होगा ना धोबी घाट में क्या हालत होते जानते। इसी प्रकार जो है यदि हम छोटा पाप किया है, पाप हमारा यहीं से निष्कृत हो गया अब तो ठीक है, परंतु उसको आप नहीं किया इधर भूलोक में, फिर धोबी घाट यम नरक में भेजना पड़ेगा। उधर तो यमदूत जो है ना धोबी जिस प्रकार कपड़ा धोते हैं जीव की, उस प्रकार धोकर उसको शुद्ध बना देगा। इतना भयानक आपत्ति सुना तब बोलते हैं परीक्षित महाराज, बोलते गुरुदेव इतना तो पीड़ा बहुत कष्टदायक है, ऐसा कोई उपाय नहीं है जीव जो है इससे मुक्त हो जाए? जिस प्रकार वो अच्छा साबुन मिलने से हमारा कपड़ा भी साफ हो सकता है, ऐसा कोई अच्छा साबुन है जिससे जीव मुक्त हो जाएगा? सुखदेव गोस्वामी तुरंत अवश्य है, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति काचनेया निहारम यह भास्कर। इसी अध्याय स्कंद में प्रथम अध्याय के 15 श्लोक में बोलते हैं, केचित केवल या भक्त वासुदेव परायणा, वासुदेव श्री कृष्ण का परायण होकर शरणागत होकर पूरा अनन्य भक्ति जो कर लेते हैं, अगम गुरुधुनवंत कार्चनैया, उनका समस्त पाप पूरा से मिट हो जाएगा, छूट हो जाएगा, उन सब नष्ट हो जाएगा। कार्चनैय का अर्थ दोबारा नहीं है, कुछ पाप है जैसे कि प्रायश्चित हम करते हैं, प्रायश्चित करने से क्या, अभी जो पाप किया कर्मकांड ब्राह्मण बोले भैया ये प्रायश्चित करो ठीक हो जाएगा, प्रायश्चित कर लिया, परंतु दोबारा मैं पाप करूंगा, क्योंकि पाप का फल तो नष्ट हो गया, पाप परंतु पाप करने का जो बीज हमारे मन में है वो बीज तो निकला नहीं है, चिंता तो अपने चिंतन तो रह गया, जब तक वो बीज हमारे मन से हटता नहीं दोबारा पाप कर सकते हम। इसलिए परिचित माल तो ये तो गज स्नान है, हाथी जो पानी में जाएगा खूब स्नान करके आएगा, दो तीन हजार लीटर का पानी से साफ करेगा, और बाहर आते चार गए उसी सोन से फिर मिट्टी लेकर पूरा शरीर को ऊपर डाल लिया, फिर काहे को करना स्नान, एक मिट्टी डालना है तो प्रायश्चित कर लिया, दोबारा पाप करोगे तो लाभ नहीं है। परंतु भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण का शरणागत कर हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र की जप करने से अगम दुर्नंद कार्च नहीं आ, पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते कि दोबारा आएगा नहीं, कोई बीज नहीं रहेगा, बीज हमको ऊपर में कुछ भी नहीं रहेगा, समस्त पापों से छुटकारा पा जाएगा। निहारम है भास्कर, जिस प्रकार जो है सर्दी का मौसम में कोहरा रहता है दिखाई नहीं देता सामने कौन है, परंतु भगवान सूर्यदेव का रोशनी आते ही समस्त कोहरा भाग जाता नहीं, इसे निहारम है भास्कर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। बोलता है कि फिर परिचित महाराज बोलते हैं ये तो कहने की बात है, ऐसा कोई है क्या, ऐसा कोई उदाहरण भी है कि एक दफा भगवान का नाम ले लिया तुरंत तो छुटकारा पा लिया। तब सुखदेव गोस्वामी अजाल अजामिलो उपाख्यान बता देते हैं। अजामिल एक शुद्ध ब्राह्मण था, परंतु एक दिन जंगल में जाकर यज्ञ के लिए समिधा पुष्प वगैरह लेकर आ रहा था, रास्ते में एक शूद्र को देखा, एक स्त्री से आलिंगन करते हुए उसका मन भटक गया, ब्राह्मण होते भी पतित हो गया, पतित होकर उस स्त्री का शूद्र वेश्य के साथ अपने घर में रहने लगा, उसे कई बच्चे हो जाते हैं, सबसे छोटा बच्चा का नाम नारायण रखता है, उस समय 80 साल का वो वर्ष था। एक दिन वो भूल गया कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, दिन नजदीक आ रहा भूल गया, विषयवासन में वेश्य का इतना भूल गया, तो एक दिन देखा कि चार भयानक आदमी, तीन भयानक जीव जो है मनुष्य जो है उनका तरफ आ रहे हैं, हाथ में रस्सी लेकर आ रहे हैं, देखते डर गया, इतना भयानक उनका रूप था, देखते डर गए, दूर उनका दूर में उनका लड़का नारायण, छोटा लड़का का नाम था नारायण था, सबसे छोटा था, ओ नारायण आ जाओ बचाओ बोल के भाई से नारायण का नाम पूरा आंखों में पानी आ रहा, शुरू से बड़ा मन से भगवान से नारायण का नाम भगवान का नहीं था, अपने पुत्र को बुला रहा था, जैसे पुत्र को बुलाया यमदूत आकर जो है उनका गले में यमपाश डालकर खींच रहे जीव को, इतने में जैसे नारायण बुलाया विष्णुदूत भी वहां प्रत्यक्ष होकर यमदूतों को चपा चेतावनी करते भगा देते हैं, कौन है तुम लोग यहां, ये किस लिए इनको कष्ट दे रहे हो, यमदूत बोलते तुम लोग कौन है, बोलते हम नारायण का दूत है, ये बोलते हम तो यमदूत है, यमराज का आज्ञा से हम ये जीव को लेकर आए जाने के लिए आया, ये पाप किया है, बोलते पाप किया, कहां पाप किया, इसने मृत्यु समय में अंत में नारायण बोलकर बुलाया है, इसने कई कोटि जन्मों से जितने भी पाप किया समस्त पापों से निष्कृत हो चुका है, जब पाप ही नहीं है और यमराज के पास कैसे ले जाएगा, वो धर्मराज कैसे माना, जो धर्म के अनुसार नहीं चलता अधर्मी हो गया है, तो यमदूत बोलते हैं हमें बेवकूफ मत बनाओ, नारायण जो है तुम्हारा स्वामी को नहीं बुलाया, हमारे उनका लड़का को बुलाया, विष्णुदूत बोलते हैं नहीं नहीं, नारायण जो नाम है शाश्वत अनादिकाल से हमारे भगवान का, हमारे श्री भगवान का है, ये दो साल पहले अपने पुत्र को नाम रखा होगा, परंतु हमारा स्वामी का तो अनादिकाल से नाम नारायण है, और नारायण चाहे अपना लड़का को बुलाओ किसी को बुलाओ तन्मयता से पूरा भाव से बुलाया और नारायण के लिए, और जैसे नारायण बुलाए वो समस्त पापों से छुटकारा पा ले, बड़ा अच्छा लिखा है मृियमाणी बोल के, मरते समय इसने नारायण का नाम तन्मयता से लिया है, नाम लेते समय किसी का चिंता नहीं था, इसलिए समस्त पापों से मुक्त हुआ, इसलिए तुम ले जाने का अधिकारी नहीं बोल के वाक विवाद काफी चलता है। यमदूत बोलते हैं कैसा हो सकता, नारायण ऐसा होता, शास्त्र कहां कहां लिखा है, फिर बताते हैं सांकेतम पार्यास्यम व शोभम हेलनमेव वा। यदि भगवान श्री नारायण का नाम जो है किस संकेत से, परिहास से भी लिया, जैसा चैतन्य महाप्रभु जन्म लिया था, अब प्रकट हो रहे थे उस समय जो है गंगा जी के स्नान में, सभी उधर माया नवद्वीप मुसलमान भी थे, वो भी स्नान कर रहे थे, हिंदू सो सभी हरि हरि बोल के स्नान कर रहे थे, मुसलमान वो कॉपी कर रहे थे, हरे हरे क्या बोल रहे, देख लो भाई ये तो हरे हरे बोल रहे हैं। इस प्रकार परिहास से भी भगवान का नाम ले लिया ब्रह्मा, बोलते हैं ऐसा को भगवान का नाम ले, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघो हरम विधो। यदि परिहास से भी, सांकेत से भी, स्तोभ से भी, कोई भी किसी प्रकार से भी भगवान का नाम ले लिया, समस्त पापों से छुटकारा पाएगा बोल के शास्त्र कहता है। इस प्रकार वाद विवाद चलने के पश्चात जो है ये यमदूत वहां से निकलना ही पड़ा। ये दोनों का चर्चा चल रहा और अजामिल जो है दोनों को सुन रहा, देख रहा, यमदूतों को भी देखा, कितना भाग्य था और विष्णुदूतों को भी देखते। विष्णुदूतों का दर्शन स्थूल दुर्लभ है, विष्णुदूतों का दर्शन अर्थ है आप विष्णु को देख लिया, उनका अत्यंत दुर्लभ है, परंतु उनका भाग्य था, नारायण बोलकर बुलाया था, अंत काले चमामे स्मरण मुक्ता कलेवरम, भगवान का वाणी है, इसलिए नारायण का नाम लेने का कारण जो है उसको कारण जो है विष्णु दूतों का भी दर्शन हुआ। और दोनों का संवाद जब सुना, जब वो कहने को कुछ चाहता था, यमदूत को तो भगा दिया विष्णुदूत वहां से, यमदूत जाने के बाद अजामिल विष्णुदूत से कुछ कहना चाहता था, तुरंत विष्णुदूत उनका अभिप्राय समझकर अदृश्य हो गया वहां से, क्योंकि उनके लिए यमदूतों से बात करने के लिए योग्यता नहीं है अभी तक उनसे, इसलिए तुरंत अदृश्य हो गया। अभी आज सोच रहे हैं, आज का दो श्लोक का एक के साथ है, जब अदृश्य हो गया बोलते हैं अजामिलोप्यथा कर्ण्यम दूतानाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैवेद्यम च गुणाश्रयम। अजामिल जो है यमदूत और कृष्ण दूतों के दोनों के बीच में जो संवाद चला था सुना है, धर्मम भागवतम शुद्ध त्रैवेद्यम च गुणाश्रयम भक्तिमान भक्ते चाशु महत्न श्रवणाधरे अनुतापो महासेनात्मरतु अशुभमात्मनः। यमदूतों का तथा दोनों के बीच में जो संवाद चला था पूरा सुना है, और भगवान का नाम, भगवान का गुण, लीला, यश का क्या महत्व है वो भी सुना, तो सुनकर पश्चाताप करने लगा कि मैं ऐसा क्यों पाप किया। जो भौतिक रूप से जो भी हमारे को मिलता है, क्या बोलते हैं, धार्मिक सिद्धांतों का समझ सका और जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन कार्य करते हैं, ये सिद्धांत तीनों वेदों में उल्लेखित है। अर्थ है वेदों में कर्मकांड कई कांड है, उपासना कांड, कर्मकांड, ज्ञान कांड, सभी कांड है, परंतु आजकल कलयुग के प्रभाव से कर्मकांड के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। कर्मकांड के अनुसार बोलेंगे भैया आप ये पूजा करो तुम्हारे को ये मिलेगा। कर्मकांड का उद्देश्य है कि अंत में धीरे धीरे प्रगति में जाकर भगवत भक्ति माना चाहिए, परंतु कर्मकांड तक रुक जाते हैं, मैं ये काम करूंगा मेरे को सुख मिलेगा, सुख मिलने के लिए शरीर छोड़ूंगा तब जाकर स्वर्ग में जाएंगे, वापस फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि ये तीनों गुणों के अधीन कार्य करते हैं, परंतु जो दिव्य भक्ति धर्म का सिद्धांत है वो तीनों गुण का अधीन में नहीं है, समझ रहे ना। जो हमारे को जीवन में जो सुख दुख मिलना है वो मिलेगा ही, हमारा किया वो कर्म के अनुसार मिलेगा। तस्य हेतु प्रयतेत कोवितो ना लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यदे। नारद महर्षि बोलते हैं उस हेतु के लिए मनुष्य यत्न करना चाहिए जो तीनों लोक में जाने से भी नहीं मिलेगा, ब्रह्मलोक ऊपर यद मिल अंत में ब्रह्मलोक भी जाएगा वहां भी नहीं मिले, उसके लिए हेतु के लिए हम यत्न करना चाहिए। दुखवत अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रम्मासा। जीवन में सुख या दुख है समय का अनुसार अपने आप मिलेगा, उसके लिए हम यत्न करना नहीं है। पिछले जन्म में जो हम कार्य किया कर्म किया उसके अनुसार इस जन्म में सुख या दुख अपने आप मिलते रहेगा, उसके लिए हम यत्न करना नहीं। यदि हम चाहते हैं कि दुख ना हो तो आएगा ही, यदि हम चाहे सुख चाहिए सुख आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए मैं कर्म किया ही नहीं है। मैं तो एमए पास किया नहीं लेकिन मैं तो टीचर बनना कैसा बनेगा, मैं पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया है तो सुख मिलेगा, मैं तो किया ही नहीं है। और कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्व चल रहा, उसका तो कोई नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं कर्म कैंसिल करता हूं, संभव नहीं है। त्रिगुण देवा जितने भी विश्व में जो भी देव देवता हैं सभी कर्म के सिद्धांत को पालन करना उसका अधीन में है, किसी में शक्ति नहीं है कि किया हुआ कर्म को छुटकारा पाएंगे। कई बोलेंगे भाई नहीं नहीं मैं उस बाबा को मैं प्रार्थना किया था मेरे को सुख मिला ना, मूर्ख है वो। कभी कभी इतना ऐसा कोई नहीं कर सकता, कभी बड़ा महात्मा संत पुरुष जो दिव्य ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, जब मेरे को इस अभी समय जो है मेरे को कष्ट में हूं परंतु एक दो साल के बाद जो मेरा सुख मिलना था, ना दुख शाश्वत है ना सुख शाश्वत है, दिन के बाद रात आएगा, रात के बाद दिन आएगा, सर्दी के बाद गर्मी आएगा, गर्मी के बाद फिर सर्दी आएगा, इसी प्रकार सुख दुख चलते रहेगा। परंतु जब दुख है मैं जाकर प्रार्थना करूंगा, यदि वो इतना शक्तिशाली है वो क्या करेंगे मेरे प्रसन्न करने के लिए, एक साल के बाद जो सुख आना था अभी करेंगे, अभी का दुख को एक साल के बाद ट्रांसपोजिशन बोलते ना, वो कैंसिल नहीं करेंगे। इस समय मेरे को थोड़ा राहत देने के लिए सुख दे देंगे, अभी का दुख जो है एक साल पोस्टपोन कर देगा, अनुभव होना तो पड़ेगा मेरे को, किसी में शक्ति नहीं है। यदि हम इस सुख दुख से दुखों से अलग होना चाहते हैं उससे मांगना चाहिए जो तीनों गुणों का परे है। मैं भी जेल में हूं, आप में जेल में है, मैं बोलूंगा भाई मैं तुम्हारे को जेल से छुड़ा दूंगा, अगर मैं जेल से तुम्हारे छुड़ाऊंगा तो मैं क्यों जेल में आया हा? यदि ये बात यदि कोई जेल से बाहर आदमी है वो बोलता है अरे भाई चिंता मत करो मैं तुम जेल से मुक्त कराऊंगा, फिर मान सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख है कष्ट है, इस कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं उनसे हम प्रार्थना करना चाहिए तीनों गुणों से परे है, वो है कौन है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, श्री राम, विष्णु तत्व है, ये तीनों गुणों से परे है, बाकी सब ये तीनों गुण का अधीन है, कर्म का अधीन है। जब इसलिए बोलते हैं कि तीनों वेदों में लोकित है, वो उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सके जो भौतिक प्राकृतिक गुणों से ऊपर है। ये वाक्य जो है विषय को भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन समझा रहा था दूसरा अध्याय में, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। अब तक ये अर्जुन ये जो वेदों का वाणी वेदावर्त अच्छा लगता है, वेदों का जब कर्मकांड ब्राह्मण मंत्र पढ़ने लगेंगे ना बड़ा स्टाइल से पढ़ेंगे, संस्कृत हमारे संस्कृत नहीं आता इसलिए वो सच बोल रहा झूठ बोल रहा भगवान ही जाने, हमारे सुनने के लिए अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है वो वेद मंत्र लिखा है भगवत में बोलता वेद अवादरताम पार्था बड़ा अच्छा लगता है वो, लेकिन कर्मकांड का है क्या लाभ है उससे। परंतु जो दिव्य धर्म है कर्मकांड से ऊपर है। दिव्य धर्म क्या है, मनुष्य का एक ही धर्म है और कुछ नहीं है, पराभवस्था बधो जदातम यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्व। यदि मनुष्य शरीर लेने का पश्चात भी यदि आत्म तत्व के बारे में कोई चिंता नहीं किया वो जीवन से हार गया, अर्थ है मनुष्य जन्म को वृथा में चला दिया। मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य है, क्या है, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना, उससे के लिए पहले आत्म तत्व के बारे में चिंतन करो फिर भगवत तत्व के बारे में चिंतन करेगा। मैं कौन हूं, सनातन गोस्वामी पास भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रथम दफा मिला था, पूछा था अमी के मैं कौन हूं, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं, हम चिंता करना चाहिए मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं, ये चिंता करना चाहिए। इसलिए स्कूल में जो भी पहला था सबसे प्रथम लेसन क्या है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, अविनाशी है। यह प्रथम है, यदि नहीं करेंगे कर्मात्मकम ये न शरीर बंध है, आत्म तत्व के बारे में जब हम चिंता नहीं करेंगे, माया तत्व के बारे में चिंता करेंगे, मन तो कुछ न कुछ चिंता करेगा ही है, धर्म के बारे में सोचेगा नहीं तो अधर्म के बारे में सोचेगा, पुण्य कर्म का करने का सोचेगा नहीं तो पाप कर्म करोगे, कोई ना तो कोई करना ही है, सोचना ही पड़ेगा। परंतु माया कर्म के बारे में चिंतन करेंगे, कर्मात्मकम ये न शरीर बंध है, कर्म करते रहेंगे, उसका कर्म का काम जो है उसका फल भोगने के लिए जन्म मृत्यु जरा सागर में घूमते रहेगा। ये सब समझ लिया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते अर्जुन तुम भी ये तीनों गुण से परे हो जाओ, निस्त्रय गुण न भवा अर्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्यस्तो निरुपच्छेम आत्मवान, ये द्वंद्व से पूरा हो जाओ। क्या है द्वंद्व, क्या सुख दुख, दिन रात शीत उष्ण, ये सभी से द्वंद्व है, ये सभी शरीर से संबंध है। कहने का तात्पर्य है भगवान कह रहे हैं कि ये अर्जुन हम लोगों को भी संबोध देना है, ये सुख दुख सर्दी गर्मी ये जो है शरीर से संबंधित है, आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा को ना ठंड है ना गर्मी लगता, ना कष्ट है ना सुख है, ये शरीर के लिए है। तो मनुष्य जीवन में देहात्म बुद्धि ना होकर ब्रह्मभूत स्थिति में आना चाहिए, आत्मभूत स्थिति में स्थित होना चाहिए। परंतु देहात्म बुद्धि में होने के कारण जो है दुख भी लगेगा, सुख भी लगेगा, गर्मी ठंड ये चलता रहेगा, द्वंद्व में रहेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग अक्षम आत्मा, उससे परे हो जाओ। यही जो है इससे परे होना ही दिव्य धर्म है। अजामिल समझ लिया कि दिव्य धर्म का सिद्धांत भी समझ लिया, समझ लिया। और जो जीव तथा भगवान के बीच संबंध से संबंधित है, दिव्य धर्म का ही सिद्धांत है। क्या है जीव और भगवान के बीच में क्या संबंध है, भक्ति में हम आगे बढ़ना है तो तीन आवश्यकता है हमारे को, एक तो विश्वास, संबंध स्थापना और समर्पण, ये तीनों चाहिए। हर एक जीव का भगवान से पांच संबंध में से एक संबंध अवश्य है। अब संबंध सभी जानते हैं ना, शांत भाव, दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। इसके अलावा और कोई संबंध है विश्व में, कोई है सोच ले, कोई है ही नहीं है। और जीव को भगवान से इसमें पांच में से कोई ना कोई संबंध है, टोटल 12 है लेकिन बाकी एक एक के अंदर आ जाता, पांच मुख्यता है। हम संबंध भी होना चाहिए, संबंध स्थित तब होगा जब दिव्य धर्म में हम स्थित होकर भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करना है, अन्यथा नहीं होगा। भगवान का नाम स्मरण जब तक नहीं होता नहीं होगा। एक भगवान व्यास महर्षि जो कृष्ण का साक्षात अवतार है, उनको मालूम है कलयुग में तपस्या वगैरह संभव नहीं है, इसलिए कलयुग जीवों के लिए आयुष भी कम है। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंदा मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। मालूम है कि हमारे कलयुग में हमारा स्थिति क्या है, इसलिए बड़ा सुलभ ढंग बता दिया। 12 स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, परीक्षित महाराज बोलते हैं, गुरुदेव भगवान कलयुग में इतना अनिष्ट है, इसमें भगवान का भक्ति कैसे होगा, भगवत धाम में कैसे जाएंगे, बड़ा कठिन है, मन करेगा नहीं है। कलो देशे निधे राजनस्त्ये को महागुणान कीर्तनीय कृष्णस्या मुक्त संगम परम रजेत। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये कलो देशे निधे राजन, राजन कलयुग समस्त दोषों का खजाना है, इसलिए हम भक्ति करना चाहते हैं, मंदिर आना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पाएंगे। कभी कभी मंदिर तक आएंगे, अरे कल चलेंगे, आगे चलते सिनेमा है। मन करने से भी कई दफा नहीं आ पाएंगे, कई बहाना मिलता है। तो ये कलयुग का प्रभाव है, परंतु इसलिए कलयुग का प्रभाव के कारण जो है भगवान सभी सब सूक्ष्म कर दिया। कीर्तनी वै कृष्णस्य केवल जो है कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तनी वे कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत बोलता है। केवल भगवान श्री हरि का कृष्ण का नाम स्मरण से ही तुम्हारा मुक्त हो जाएगा। इससे सुलभ क्या कंसेशन चाहिए, पूरा डिस्काउंट दे दिया 99%। हम 1% ही करना है। और सुखदेव गोस्वामी और भी बोलते हैं, जो बुद्धिमान है इसको मानेगा। कलिम सभाजयं तार्या गुणज्ञा सार भागिना, जो गुणज्ञ है बुद्धिमान है समस्त शास्त्रों को पढ़ा है वो तोता भी पढ़ लेता है। पढ़ने से नहीं, उसको सारांश को जानना है। कई बोलेंगे हम भागवतम पढ़ा जी बचपन से, अब जानते मैराथन में जो गीता कर, हम रोजाना पढ़ते हैं जी भागवतम पढ़ा, हम रोजाना पढ़ते हैं जी रामायण हम रोजाना पढ़ते हैं। कुछ सुनाएगा आप, सुनाएगा तोता को भी सुनाओ, सिखा दो रोजाना, वो भी सुनाएगा, तोता समझता है। पढ़ना और समझना दोनों अलग है। पढ़ना एक बात है, जब तक समझेगा नहीं लाभ क्या हुआ, पढ़ने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सारा भागना, उसका सारांश जो समझ लिया, बुद्धिमान जो समझ लिया, कलिम सुभाजयंतार्य गुणज्ञा सारा भागना, नाम संकीर्तन नहीं सर्वसार्थो भी लभ्यते, जो बुद्धिमान है समस्त शास्त्रों का सारांश को, सार को, एसन को समझ लिया, वो कलयुग को प्रशंसा करते हैं। क्योंकि कलयुग से बढ़कर अच्छा समय और कोई है ही नहीं है। भगवान का नाम संकीर्तन नहीं ना, भगवान का संकीर्तन से ही सर्वसार्थोपि लभ्यते। यदि आपको भौतिक इच्छाएं हैं वो भी पूरा हो जाएगा। यदि आमा जो सिख भगवान का नाम ले रहे हैं उसको भगवत धाम जाना चाहते वो भी है। यदि भगवान के सेवा में रत रहना चाहते वो भी मिलेगा। सर्वसार्थोपि लभ्यते, अकामा सर्व कामा व मोक्ष कामा उदार दी तीव्र न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। शुरू में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भगवान श्री हरि का नाम और गुण का, भक्ति का इतना प्रभाव है कि आपको जो इच्छा है ही नहीं कोई बात नहीं करो, पूरा इच्छा है भौतिक इच्छा है वो भी भक्ति करो मिलेगा, मोक्ष की इच्छा है तब भी करो। अर्थ है कि कोई भी इच्छा है भौतिक या आध्यात्मिक इच्छा है, यदि भक्ति करना है तो किसको करना है, भगवान श्री हरि को। ये भागवतम कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी पाद स्वयं कह रहे हैं भागवतम में। ये तो विशेषता है कलयुग के लिए, ये सब समझ लिया हा? और जब तक जीव तथा भगवान के बीच संबंध से समझ, इतना ही नहीं अजामिल ने भगवान के नाम यश गुणों तथा लीलाओं के गुणानुवाद को सुना, इस तरह वो पूरी तरह शुद्ध भक्त बन गया। शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है, अनन्य ज्ञान कर्म अनावृत, कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारा शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या होता, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर भवता भक्ति रहित की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु बोलते ना, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर भवता भक्ति रहित की त्वयि। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहां तक के मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए, परंतु मैं क्या चाहता हूं, मैं सेवा आपके प्रीति के लिए कर रहा हूं। हर समय में हर जीवन में जितने भी मेरे जन्म हो, हर जन्म में आपके श्री चरणों का सेवा करना चाहता हूं। जब आप भगवान के चरणों का सेवा कर रहे हैं, भगवान का साथ है, वो मोक्ष नहीं है, सोच लीजिए थोड़ा, मोक्ष है। जो भक्त भगवान का सेवा कर रहे हैं, इसलिए प्रपद भी लिखते हैं, ये भगवान जो कंपाउंड एरिया है भारत में, बॉम्बे में होते हुए बॉम्बे का नहीं है, ये वैकुंठ है। आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं, इधर अमेरिकन काउंसिल है ना, इधर ही होगा ना, कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर भारत का कोई भी नियम लागू नहीं होता, मालूम होगा आप लोगों को। उनका ऑफिस टाइमिंग भी अमेरिका का टाइमिंग के साथ चलता है, केवल हम लोगों को वीसा देने के लिए कुछ क्लर्क बैठते हैं, कोई ऑफिसर्स नहीं आते हैं, इसलिए बोलता है भाई कल आकर वीसा ले लो, क्योंकि उनके ऑफिसर जो है शाम के 6 बजे आएंगे, हमारा 6 बजे भारत का अर्थ है उधर सुबह 7 बजे। तो उन लोग सुबह उनका अमेरिका का प्रेसिडेंट चला जाएगा ऑफिस से, शाम को उनका 4 बजे करते हैं, सुबह हमारा 4 या 5 बज जाता है, तो रात भर रहना। परंतु हम लोगों का सुविधा के लिए डे टाइम में सॉन्ग काउंसिलर सेक्शन रखते हैं, बाकी कोई नहीं करता। और हमारे भारत का कोई नियम उसमें लागू नहीं होता। हमारा पुलिस किसी को अरेस्ट करेंगे बोल के अंदर नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार जो है वो बॉम्बे में, तो बॉम्बे का नहीं है, इस प्रकार जो है ये जितने भी कंपाउंड स्थिति है, इतना भूमि भारत इसी बॉम्बे में होते भी ये बॉम्बे का नहीं है, वैकुंठ का है। आप अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर का प्रांगण में आ गया, आप स्वयं अनुभव करो आपका मन का स्थिति बदलता है कि नहीं। रोड पर था आप कैसा थे, जैसे मंदिर प्रवेश किया आप कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं। क्यों? भगवान का वास होता, मंदिर बोलते हैं ना, हम रहने से क्या बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं, हमारे घर को घर बोलते हैं, बोलते नहीं हम मंदिर नहीं बोलते, भगवान जा रहा थे वही मंदिर है, वही घर है, लेकिन भगवान वास करते हैं इसलिए मंदिर कहते हैं। इसलिए प्रपद बोलते हैं, लिखे भी व्याख्या में, बोलते हैं जो भक्त भगवान का सेवा कर रहे हैं, सभी सेवाएं के ने पुजारी सेवा ने, जो भी इस सेवा के लिए मंदिर चलाने के लिए जो भी सेवा रहा वो सभी भगवान का सेवा ही है। इधर कोई भी वस्तु भौतिक नहीं है, सब आध्यात्मिक है, वो सभी जीवन मुक्त है। क्यों? जो सेवा शरीर छोड़ने के पश्चात भगवत धाम में भगवान को सेवा करना था, वही इसी भौतिक शरीर में रहते हुए भी सेवा कर रहा, इसलिए वो जीवन मुक्त कहलाता है। प्रपद इसके ऊपर 2-3 जगह लिखा है इसके बारे में। ये सेवा का बड़ा महत्व होता है, इसलिए ये सब समझ लिया। ये तो बड़ा लंबा व्याख्या है, समय हो रहा। तो तब उसने शुद्ध भक्त के लिए बोला है कि शुद्ध भक्त प्राप्त किया, क्योंकि उसने पूरा संवाद सुनकर परिवर्तन हुआ। ब्राह्मण तो था ही, भटक गया था, परंतु उसको उसका बड़ा भाग्य से विष्णु दूतों का दर्शन हुआ। विष्णु दूतों के दर्शन होते शुद्धि हो जाता है। जिस प्रकार जो है हम भगवान के सामने खड़ा हो जाते ही, सामने खड़ा होकर भगवान का दर्शन करने से हमारे कई जन्मों का पाप नष्ट होता है, और जब प्रणाम करेंगे भक्तों का सांगत्य में बैठेंगे, इसका बड़ा प्रभाव रहता। इसलिए कपिल महर्षि बोलते हैं भगवान का लीला कथा कैसा सुनना चाहिए, भक्तों से भक्तों का सांगत्य में। सदाम प्रसंगम मम वीर्य संविदो भवन तिरत्कर्ण रसायना कथा तद्जोशनादश अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा भक्ति रसिक अनुक्रमिष्यति। भगवान कपिल महर्षि बोलते हैं भगवान का कथा कैसा सुनना चाहिए, भक्तों से भक्तों का सांगत्य में। भक्तों का सांगत्य बहुत प्रभाव है, बहुत आवश्यकता है, बड़ा भाग्य से मिलता है। पुण्य पुंज बिन मिलही न संता सत संगति संस्कृति करांता, कई जन्मों का संचित पुण्य कर्म जागृत नहीं होता तब तक किसी भक्तों का सांगत्य नहीं मिलता। कई जन्मों के, एक जन्म ने कई जन्मों के पुण्य कर्म किया है, वो संचित पुण्य कर्म का प्रभाव से भक्तों का सांगत्य अवकाश मिलता है। उस जब भक्तों का सांगत्य आने से क्या, संस्कृत का रामता भवसागर से छुटकारा पाएंगे, भगवत धाम जाने के लिए के साधन है भक्तों का सांगत्य। इसलिए हमेशा हम यत्न करना चाहिए, किस प्रकार भी हो भक्तों का सांगत्य लेना चाहिए। जीवन में हम पूरा दिन रात जीवन पर्यंत काम कर रहे हैं, वो कमा रहे, एक हमारे जरूरी अनिवार्य जीव निर्वाह के लिए वो सभी आवश्यकता है, परंतु वही जीवन है बोलकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये सब शरीर से संबंधित है। आप 10-15 कार कर लीजिए, 10-15 मकान, बड़ा बंगला बना दीजिए, 10-15 बच्चे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब मैं मर जाऊंगा सबका सब इधर रहेगा। कोई हमारे साथ जाते हुए देखा? मैं 2-3 करोड़ रुपया बैंक में जमा कर भी दिया, राम नाम सत्य हो गया, इधर रहेगा और बैंक पैसा वाला हो जाएगा। मैं दोबारा जन्म हो गया, भगवान की कृपा से मेरे को याद आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरे 2 करोड़ है, याद आएगी, मैं जाकर पूछूंगा, दे देंगे, भगा देंगे ना, फिर क्या लाभ हुआ? जीवन पर्यंत मैं खाए नहीं, पैसा बचाते रहा, इतना किया, सब छोड़ दिया। हम जीवन में उस चीज के लिए यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं जो हमारे साथ चलता नहीं, परंतु उसके लिए हम यत्न कम करते हैं जो हमारे साथ चलता है, वही भगवान का भक्ति। शाश्वत रूप से हमारे से चलेगा। भगवान भगवद गीता में छठवां अध्याय में बोलते हैं, यदि इस जन्म में आप भगवत धाम जाने का अधिकार नहीं बना तो कोई नुकसान नहीं है, दोबारा आप भक्तों के घर में जन्म लोगे, आप भक्ति यहां छोड़ागा उससे आगे करोगे। इस जन्म में 35% किया, अगले जाकर क्या करोगे, जीरो से नहीं, 36-37 परंतु भौतिक क्या है, 2 करोड़ रुपए गया, दोबारा 1 पैसा 2 पैसा जमा करना पड़ेगा मेरे को, कुछ नहीं है लाभ है। इसलिए सोचना चाहिए हमें, अब सभी भाग्यशाली है भक्ति में, इसलिए तभी आए हैं, तो फिर भी हम थोड़ा इसको तीव्र से लेना चाहिए। हमें जो अपना मित्र है, संबंधी है, बंधु लोग है, उनके समझाना चाहिए कि भैया ये तो भौतिक वस्तु इधर रहेगा, अमर साथ जाएगा, भगवान का भक्ति धर्म ही जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। इसलिए जीवन में भक्ति के आश्रय लेना जरूरी है। तुष्टे ततत्र भगवत, भगवान बोलते हैं कि भगवान कृष्ण को यदि संतृप्त कर दिया आपका सेवा से, ऐसा कोई वक्त नहीं है आपको मिलेगा ही नहीं, किम अलभ्यम अनंतमाद्य, भगवान संतुष्ट हो गया आपका भक्ति से, ऐसा कौन सा वस्तु आपको नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। सो यही सोच रहा, सोचकर अपने जीवन में तुरंत ही अजामिल जो है उसने अपना पाप कर्मों का स्मरण हुआ, बड़ा दुख किया कि मैं पाप करूं, क्यों किया। हम भी यदि हम कोई करते हैं पिछला को स्मरण करते हैं, अजामिल जैसा पश्चाताप करके भगवान का नाम स्मरण, भगवान का सेवा में पूरा लगना चाहिए, ताकि हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाए। यहीं पर समाप्त करते हैं, किसी कोई प्रश्न या आलोचना है स्वीकार करेंगे। समाप्त करें। श्रीमद भागवत पुराण की जय, जगत श्रील प्रपाद की जय, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय।